His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. His Divinity Founder Acharya Srila Prabhupada ki. Shri Shri Nitai Gaura Sundar ki. Gaura Purnima Maha Mahotsav ki. Yugadharma Harinam Sankirtan ki. Samaved Gaura Bhakta Vrinda ki. Nitai Gaura Premanande. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Anta Krishnam Bahirgaura
Anta Krishnam Bahirgaura
Darshitanga Divaibhavan
Darshitanga Divaibhavan
Kalo Sankirtana Dhyasmaha
Kalo Sankirtana Dhyasmaha
Krishna Chaitanya Mashritaha
Krishna Chaitanya Mashritaha
Anta Krishnam Bahirgaura Darshitanga Divaibhavan Kalo Sankirtana Dhyasmaha Krishna Chaitanya Mashritaha Anta Krishna Bahirgaura Darshitanga Divaibhavan Kalo Sankirtana Dhyasmaha Krishna Chaitanya Mashritaha
Anta Krishna Bahirgaura
Anta Krishna Bahirgaura
Anta Krishna Bahirgaura
Darshitanga Divaibhava
भागवत संदर्भ या षट संदर्भ के मंगलाचरण के रूप में दिया है। ये श्लोक भी उन्हीं का ही है जो भागवत के श्लोक की उसी ग्रंथ के दूसरे श्लोक के रूप में व्याख्या है। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक नौ महर्षियों में से एक श्री करभाजन द्वारा कहा गया है और इसकी विस्तृत व्याख्या जीव गोस्वामी के ग्रंथ षट संदर्भ की टीका सर्व संवादिनी में दी हुई है। अंत कृष्ण उस व्यक्ति का निर्देश करता है जो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। यह श्रीमती राधा रानी का प्रधान गुण है। यद्यपि अनेक भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं किंतु वो गोपियों से आगे नहीं जा सकते। गोपियों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण का चिंतन करने वालों में सर्व प्रमुख है। श्रीमती राधा रानी की कृष्ण चेतना अन्य सारे भक्तों की चेतना से बढ़कर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी का स्थान ग्रहण किया, अतएव वे सदैव राधा रानी के ही समान सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहे। भगवान कृष्ण के चिंतन द्वारा वे सदैव कृष्ण को आवृत किए रहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य को श्री कृष्ण चैतन्य जो ऊपर से गौर वर्ण के थे और जिनका रंग पिघले सोने जैसा था, उन्होंने अपने नित्य पार्षदों ऐश्वर्यों अंशों तथा अवतारों को एक साथ प्रकट किया। उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन की विधि का प्रचार किया और जो उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वे धन्य है। ओम ज्ञानतिमिरान्तश्च ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपी वाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसृते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि घोर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र तिथि है जिसका वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर अपनी रचना चैतन्य भागवत में करते हैं। तो आज की कृपा गुणगान वृंदावन दास ठाकुर कई सारे श्लोकों के माध्यम से करते हैं। कहते हैं चैतन्य जन्म यात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा ब्रह्मा आदि ये तिथेर करे आराधना। ये जन्म यात्रा है। किसकी जन्म यात्रा है? श्री चैतन्य महाप्रभु की। और इस तिथि का इंतजार ब्रह्मा आदि देवतागण करते हैं। कहते हैं परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी। ये जो आज का दिन है ये साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है। भक्ति का मूर्तिमान रूप है आज का दिन। इसलिए वो कहते हैं यही अवतीर्ण है लेना द्विजमणि। आज के दिन इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु इस भूतल पर अवतरित होते हैं। और कोई व्यक्ति यही दुई तिथि करेला सेवन, वो कहते हैं इस तिथि का कोई सेवन करता है उसका अर्थ है इस तिथि का पालन यदि कोई व्यक्ति बहुत ही उत्साह के साथ करता है तो क्या हो सकता है? कृष्ण भक्ति हय खंडे अविद्या बंधन, उसके हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति स्थापित हो जाएगी और उसके हृदय का जो अज्ञान का अंधकार है तमनाश हो जाएगा। तो लेकिन इसके लिए है श्रद्धा की आवश्यकता है, क्योंकि श्रद्धा के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु को समझना बहुत ही कठिन है। तो इन सारे कई बार हम बहुत सारे महिमा का वर्णन शास्त्रों में सुनते हैं, लेकिन हमारा फेथ इतना प्रबल नहीं होता उसमें। लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि उसमें हमें बहुत गहरे श्रद्धा जागृत करनी होगी, और आज की जो तिथि है, आज का जो दिन है, उसको उत्साह के साथ मनाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके द्वारा करोड़ों करोड़ जन्मों के जो बंधन है उनका विनाश निश्चित है। तो इसी कारण से सारे आचार्य गण हमें प्रेरित करते हैं कि केवल किसी की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है इस युग में, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जब वृंदावन में थे, तो उन्होंने अपने सेवक को कहा कि हे मेरे सेवक, तुम क्या करो, चैतन्य चरितामृत को निकालो और उसके बारे में पढ़ो, उसमें से पढ़ो। तो वो कहते हैं हम वृंदावन में रहते हैं, तो हमें वृंदावन के कृष्ण का गुणगान पढ़ना चाहिए, वृंदावन के कृष्ण का गुणगान श्रवण करना चाहिए। और आप कहते हो कि किसके बारे में सुनो, श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में जिस राज्य में तुम निवास करते हो उसी का ही गुणगान करना चाहिए। तो वो कहते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो वो कहते हैं कि ये जो युग है इसके राजा कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। तो इसी कारण से चाहे व्यक्ति इस संसार के किसी भी स्थान में, किसी भी कोने में, किसी भी धाम में क्यों ना निवास कर रहा हो, उसको किसी ना किसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गुणगान अपनी जीवा से करना चाहिए और अपने कानों से क्या करना चाहिए, एक चित्त होकर श्रवण करना चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए जो गीत हमने गाया उसमें वासुदेव कोश कहते हैं कि गाओ गाओ पुना गौरांगे रघुन सरल करिया मान, कि आप क्या करो, अरे हे भौतिक बंधन में बंधे हुए जीव, निरंतर अपने जीवा से श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों का गुणगान करो। इसलिए प्रभुपाद एक गीत हमेशा गाया करते थे नरोत्तम दास ठाकुर का, उस गीत में प्रभुपाद कहते थे गोरा पहो ना बजिया मैनो प्रेम रतन धन गेलाय हरायनो, हे गौरांग महाप्रभु मेरा अनुराग आपके कार्यकलापों में नहीं है, और आपकी सेवा न करने के कारण प्रेम रूपी जो रत्न है उसको मैंने अपने जीवन से खो दिया है। और एक आचार्य है नरहरि सरकार, जिनका गौर आरती में नाम गाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है, उसमें वो कहते हैं मन रे कहना गौर कथा, हे मेरे पागल मन किसका गुणगान करो, गौरांग महाप्रभु का गुणगान करो। कहते हैं गौरांग महाप्रभु का गुणगान श्रवण करने मात्र से पाषाण भी क्या हो गए हैं, पिघल गए हैं, पशुओं का हृदय भी द्रवित हो गया है। तब क्यों नहीं इस युग में आप प्रकट, इस युग में जन्म लेकर भौतिक बंधन में बंधे हो, क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हो। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद रोक दिया। आप जानते हैं दशमतर शुरू होने से पूर्व ही प्रभुपाद ने भागवतम का अनुवाद रोक दिया, और उन्होंने कहा इससे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको देने जा रहा हूं। तो उनके शिष्यों ने कहा कौन सा है, तो प्रभुपाद कहते हैं श्री चैतन्य चरित अमृत, कि चैतन्य ने या श्रीमती राधा रानी की चेतना जिसने धारण की, ऐसे व्यक्ति का अमृतमय चरित्र। तो वो चैतन्य चरित्र श्रील प्रभुपाद ने डिवोटीज को दिया, और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आचार है और विचार है, आचार भी है और विचार क्या है, सारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जिसका वर्णन गोस्वामियों ने, व्यासदेव जिन्होंने भी अपने ग्रंथों में वर्णन किया है, सारे भक्ति ग्रंथ जो महाप्रभु ने गोस्वामियों को आज्ञा दी, इस सारे गोस्वामी के ग्रंथों को निचोड़ा जाए, कपड़े धोने के बाद जैसे निचोड़ते हैं जल गिरता है, उसी भांति ये गोस्वामी और जितने भी भक्त हुए हैं सबके ग्रंथ को इकट्ठा कर लो, निचोड़ो। हाँ, उसका जो सार है वो क्या है? चैतन्य चरितामृत। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब बर्मा में गए थे, रंगून में थे, तो उन्होंने एक स्थान में बड़े बड़े लेक्चर दिए और अचानक बहुत सारी बाढ़ आ गई और ये सारे अपने शिष्यों के साथ एक स्थान में खड़े थे। देखा कि सब जगह जो भूमि है जलमय हो गई है, जलमग्न हो गई है, तो सबको लगा कि हम डूब जाएंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा ये संसार पूरा जलमग्न हो जाए और आपके हाथ में कुछ ग्रंथ है। हाँ, सोचो, भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, तो डूबने लगोगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं भगवत गीता को हाथ से छोड़ दो, और भी अपने आप को नहीं रख पा रहे हो, और भी दो ग्रंथ बचते हैं हाथ में, तो श्रीमद् भागवतम को कि क्या करो, छोड़ दो, लेकिन चैतन्य चरितामृत का आलिंगन करके उसके साथ मर जाओ। वो कहते हैं कि ये ऐसा ग्रंथ है जो कृष्णदास कविराज ने सारे आचार्यों की शिक्षाओं को, सारे भक्तिमय ग्रंथों का जो सार है उसमें प्रस्तुत किया है, और चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है वो कभी लुप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा सारे शिक्षाओं को रिस्टोर कर सकते हो यदि चैतन्य महाप्रभु का चरित्र आपके पास अवेलेबल है। तो इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु का जो गुणगान है वो साधारण नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को बहुत हल्का नहीं समझना चाहिए। पाषाण विदरे पशु पक्षी झुरे सुनियाची जान गुण गाथा, लोचनदास ठाकुर कहते हैं। अरे पाषाण पिघलते हैं, पशुओं का हृदय द्रवित हो जाता है जिनके बारे में श्रवण करने मात्र से। तो क्यों नहीं ऐसे महाप्रभु के चरित्र के प्रति हमारा आकर्षण जागृत करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हम गौरांग कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु के जो गुण है, जिस व्यक्ति के कान में प्रविष्ट नहीं हुए हैं ऐसा व्यक्ति वास्तव में पशु के समान है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु का गुणगान केवल गौर पूर्णिमा के लिए नहीं है, महाप्रभु तो हमारे लिए निरंतर है। इसलिए वासुदेव घोष कहते हैं यदि गौर न है तो, गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो कोई भी चीज हमारे सामने प्रकट नहीं होते। हाँ, उसके बाद बहुत सारे आचार्यों ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हमारे लिए स्थापित किया है, प्रदर्शित किया है, लेकिन महाप्रभु का जो महिमा है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना किसी जीव के लिए संभव नहीं है। लोचनदास ठाकुर अपने ग्रंथ चैतन्य मंगल में कहते हैं कि मैं ये ग्रंथ लिखने के लिए बैठा हूं, वो एक गांव में पेड़ के नीचे, श्रीखंड में एक गांव है, श्रीखंड एक स्थान है बंगाल में, वट वृक्ष के नीचे एक पत्थर में बैठकर उन्होंने ग्रंथ की रचना की। महाप्रभु के गुण इतने आकर्षक लगे कि एक ही स्थान से उठे नहीं, वो ग्रंथ को लिखते रहे। उसमें उसकी शुरुआत में वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा कार्य शुरू करने जा रहा हूं, मानो चंद्रमा को मैं पकड़ने जा रहा हूं, लेकिन मैं हूं बौना। तो कहते हैं आकाश के तारे गिनना संभव है, पृथ्वी की धूली के कण गिनना संभव है, समंदर के जल के कण गिनना, बूंदे गिनना संभव है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना संभव नहीं है। इतना अधिक है, इतना महिमाशाली है। तो कभी कभी कृष्ण भावना में आने के बाद कुछ साल हम बिताते हैं और बहुत हल्के से लेते हर कार्य को। हम कहते कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, प्रवचन देना। कई बार इतना एक्सपर्ट हो जाता है, धुरंधर हो जाता है व्यक्ति, क्यों कहते हैं प्रवचन देना, कीर्तन करना, सेवाएं करना, सब कुछ मेरे कौन से हाथ का खेल है? बाएं हाथ का खेल है। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मैं, हम सब आकर क्या बन जाते हैं? आई स्पेशलिस्ट, आई मीन्स मैं।
तो ये मैं की भावना जब तक बनी रहेगी तब तक महाप्रभु का गुणगान हमारे जिह्वा से नहीं निकल सकता। इस मैं की भावना को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए बहुत हल्का ना ले। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावना भावे, कृष्ण कॉन्शियस बनने से पहले हमें क्या होना होगा, कॉन्शियस बनना होगा हर छोटे छोटे कार्य के लिए। प्रभुपाद को एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद को रिपोर्टर कहता है कि कृष्ण भावना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रभुपाद कहते कृष्ण भावना भावित होना, ये कृष्ण भावना में सबसे महत्वपूर्ण है, इससे बढ़कर और कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। यदि हम सब कुछ इस भावना में आकर, इस आंदोलन में आकर सब कुछ अर्जित करते हैं, लेकिन एक चीज हमने अर्जित ना की, हमारा चित्त कृष्ण की भावना से भावित नहीं हुआ, तो हमारा आना क्या है, विफल है। केवल परिश्रम, केवल ही श्रम है। और फिर प्रभुपाद को पूछता है कि फिर आपके इस आंदोलन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्या है, प्रभुपाद कहते हैं इस आंदोलन में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, हर एक कार्य क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण से वो कनेक्टेड है, कृष्ण से संबंधित है, तो इसलिए हर चीज बहुत ही गंभीरता से जब कोई भक्त अपने जीवन में लेता है कृष्ण भावना की छोटी छोटी चीजें, तो कभी भी हम कृष्ण भावना को त्याग नहीं सकता। हर स्थिति में वो भगवत सेवा और भगवान का गुणगान करने में लगा रह सकता है। तो कुछ समय के लिए हम चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। मैं तो सोच रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज पर बोलूं, लेकिन थोड़ा समय है हमारे पास जिसमें महाप्रभु का कुछ गुणगान करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे जो हृदय की शुद्धि है वो संभव हो सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान तो हमारे संप्रदाय के हर आचार्य ने किया है, कई सारे ग्रंथों की रचना कर दी और इतने विशाल विशाल ग्रंथ लिखे गए महाप्रभु के ऊपर कि उनको देखने मात्र से लगता है इनका अध्ययन करो या ना करो या पढ़ो ना पढ़ो, ऐसे लगता है कि माउंटेन है गौर कथा का। हाँ, तो माउंटेन इतना सरलता से आप कैरी नहीं कर सकते। हाँ, तो ऐसे आचार्यों ने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन प्रमुख 5 ग्रंथ हैं जो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान बहुत ही विस्तार रूप से करते हैं सिद्धांत के साथ, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य कहते हैं सिद्धांत भले या चित्ते ना करे आलस, जा आए ते कृष्ण लागे सदृढ़ मानस। तो महाप्रभु के कथाओं के साथ ही साथ महाप्रभु अपने आचरण से जो शिक्षा या सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं उसको भी एक व्यक्ति को भक्तों के मार्गदर्शन से समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब अप्रकट हुए हैं, उस उनके जो पहला ग्रंथ उनके ऊपर लिखा गया उसका नाम था चैतन्य चरित महाकाव्य, उनके आंखों देखा हल, एक डिवोटी थे मुरारी गुप्त महाप्रभु के साथ नवद्वीप में, उन्होंने जो जो देखा रोज आके लिखा करते थे। तो ऐसे मुरारी गुप्त ने चैतन्य चरित महाकाव्य की रचना की जो संस्कृत में था, और फिर चैतन्य महाप्रभु के और एक पार्षद हुए, हाँ, शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर, उन्होंने जब जन्म लिया उनकी उनकी माता गर्भवती थी, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते थे उनको, पूछते थे शिवानंद सेन को, तुम्हारी वाइफ कब पुत्र को जन्म देगी, अभी सन्यासी को क्या काम है ऐसे प्रश्न पूछना। लेकिन महाप्रभु जानते थे कि ये साधारण बालक प्रकट नहीं होगा, कभी कर्णपुर, और जैसे प्रकट हुआ चैतन्य महाप्रभु दौड़ के गए, महाप्रभु गए और उनके मुंह में अपना अंगूठा डाल दिया, पाव का अंगूठा, और वो डिवोटी, वो जो बालक है बहुत छोटा ही बालक था, महाप्रभु का गुणगान में कई श्लोक खड़े खड़े लेटे लेटे बोल दिए उसने, महाप्रभु आश्चर्यचकित है, ऐसे ऐसे महाप्रभु के भक्त है। कृष्ण भावना की सफलता है कि कृष्ण का स्मरण, हम कहते हैं ना कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम, अरे कृष्ण प्रेम है क्या वस्तु, कृष्ण प्रेम है कृष्ण का स्मरण। हाँ, क्योंकि जिनसे प्रेम करते हो उनका निरंतर क्या करते हो, स्मरण करते हो। आचार्य गुरु श्रीमती राधा रानी का वर्णन करते हैं तो वो कहते कि कृष्ण में कृष्ण की स्मरण की जो सर्वश्रेष्ठता है वो श्रीमती राधिका है, उनका हृदय है, और सर्वोच्च प्रेम किसी के अंदर है तो वह श्रीमती राधा रानी है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त कवि कर्णपुर जिन्होंने चैतन्य चंद्रोदय नाटक लिखा जिसमें महाप्रभु का बहुत गुणगान किया संस्कृत में। अब ये संस्कृत में दो ग्रंथ आए तो भक्त लोग बहुत परेशान थे, महाप्रभु को भी संस्कृत के भाषा में बांध दिया। सारे बंगाल के भक्त कहते नहीं, सरल होना चाहिए, भगवान का गुणगान क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। प्रभुपाद ने इतने कठिन कठिन शास्त्र या ग्रंथ आदि को इतना सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया क्योंकि हृदय में दया की भावना है जीवों के प्रति। तो वैसे ही फिर एक महान भक्त प्रकट होते हैं जिनका नाम है वृंदावन दास ठाकुर। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक रचना वो लिखते हैं चैतन्य भागवत, उसका नामकरण पहले चैतन्य मंगल होता था और फिर उसके बाद नरहरि सरकार के एक शिष्य लोचन दास ठाकुर उनको उनके गुरु ने कहा कि देखो वो महाप्रभु का वर्णन संस्कृत भाषा में मुरारी गुप्त ने किया है चैतन्य चरित महाकाव्य प्रथम ग्रंथ, तुम उसको बंगाली सरल भाषा में प्रस्तुत करो। तो उन्होंने चैतन्य मंगल की रचना की और सबसे अंतिम ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु पर लिखा गया वो कौन सा था, कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत सारे ग्रंथों का सार है, सारे ग्रंथों में जो महाप्रभु की शिक्षाएं हैं उनकी लीला और सिद्धांत के साथ कृष्णदास कविराज हम प्रकट करते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं निगुड़ चैतन्य लीला के बुझिते पारे सही बुझे गौर चंद्र जार दृढ़ भक्ति। कहते कि महाप्रभु की लीला बहुत कठिन है समझना, बाहरी रूप से लगता है कि बहुत नाचना गाना प्रसाद पाना लुढ़क जाना चालक करना ये महाप्रभु की लीला है, लेकिन नहीं, निगुड़ चैतन्य लीला बुझिते कार शक्ति। अरे किसके अंदर महाप्रभु की लीलाओं को समझने की शक्ति है, क्या क्या कार्य महाप्रभु ने किया है उनको एक एक लीला को हम सोचते हैं तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं सही मुझे गौर चंद्र जार दृढ़ भक्ति, वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए दृढ़ भक्ति की भावना या गौर पाद पद्मा जार हय प्राण धन, चैतन्य महाप्रभु को जिसने अपना प्राण धन बनाया है वो व्यक्ति महाप्रभु के कार्यकलापों को समझ सकता है। और महाप्रभु के कार्यकलापों को समझने का मतलब है गौरार आचार गौरार विचार। कृष्णदास जो गौर किशोरदास बाबा जी हैं उनके ये शब्द हैं, उन्होंने छोटा सा गीत लिख दिया। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते कि महाप्रभु को समझने का अर्थ है कि दो चीजों को समझना, गौरांग महाप्रभु का आचार और गौरांग महाप्रभु का विचार। उनकी जो शिक्षा है जो उन्होंने अपने अपने अलग अलग महान महान भक्तों को प्रदान की है और अपने आचरण से भी दी है, उन चीजों को समझना ये चैतन्य महाप्रभु को समझना है। तो ये गौर लीला क्या है, शास्त्र कहते हैं कि गौर लीला जैसे किसी किताब के आखिर में अपेंडिक्स होता है परिशिष्ट, तो उसी प्रकार से कृष्ण लीला का जो परिशिष्ट है वो गौरांग महाप्रभु की लीला है। क्योंकि गौर लीला और कृष्ण लीला में कोई अंतर नहीं है या गौर तत्व और कृष्ण तत्व में कोई अंतर नहीं है, इसी कारण से गौरांग महाप्रभु के कार्यकलापों को सुनने के लिए शिवजी भी अपने कैलाश को छोड़कर भागते हैं। आप नवद्वीप जाते हो तो वह मध्य द्वीप में हंस वाहन एक स्थान आता है, तो जब पता चला कि शुद्ध गोस्वामी गौर भागवत की कथा करने जा रहे हैं नवद्वीप मध्य द्वीप में तो सारे देवतागण तत्पर हो गए जाने के लिए, लेकिन शिवजी का गहरा अनुराग था श्रवण के लिए। शिवजी ऐसे व्यक्तित्व है जो अपने पत्नी के साथ निरंतर भगवान का गुणगान करते हैं और गुणगान सुनते हैं। शिवजी का एक वर्णन आता है पुराणों में जब उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद पत्नी को लगा महल में नहीं जाएगा शादी के बाद, वो शादी हो गई, हाथ पकड़ के पेड़ के नीचे, हाँ पेड़ के नीचे बैठ के क्या किया? शिव जी ने कहा आप श्रोता और मैं वक्ता। इसलिए शिव जी कहते हैं अहम व्यक्ति शुको व्यक्ति व्यास व्यक्ति ना, वो कहते हैं भागवत को तो मैं जानता हूं और शुकदेव गोस्वामी जानते हैं, मैं ये नहीं जान, व्यास जानते कि नहीं जानते मैं नहीं जानता। उनका कहने का तात्पर्य था कि व्यास भी पूर्ण रूपेण भागवत को नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से वो जब शिवजी भगवान का गुणगान कर रहे थे पेड़ के नीचे अपने पत्नी को, तो बादल आ गए, जैसे अभी सुबह बारिश आ गई ना, बादल आ गए और बारिश होने वाली थी। ये पार्वती देवी डर गए, भीग ना जाओ, ठंड ना लगे। तो शिवजी को कहते अभी ठीक है, अभी कुछ तो बनाओ, कुटिया बनाओ, उसमें कथा करेंगे पेड़ के नीचे, लेकिन चार दीवारें तो तैयार करो मेरे लिए। कितने सपने देख के आए थे, लेकिन फाइनली शिवजी ने देखा बादल मंडरा रहे हैं, बारिश होने वाली है, तूफान आ रहा है। शिवजी ने अपनी भार्या पार्वती का हाथ पकड़ा, पकड़ के उसको उठाया, उठा के ले गए बादलों के ऊपर और वहां जाकर कृष्ण कथा को कंटिन्यू किया। कहते कृष्ण कथा में कोई व्यक्ति आना नहीं चाहिए, हाँ तो ऐसे शिवजी हैं। इतना अनुराग भगवत चर्चा में, भगवत का गुणगान श्रवण कीर्तन में, ऐसे शिवजी ने देखा कि नवद्वीप में तो सारे लोग जा रहे हैं लेक्चर में और मैं क्यों ना जाऊं। लेकिन देखा कि शुरू होने वाला है क्लास और उन्होंने सोचा, पहले तो अपने कार जो पार्किंग में खड़ा था बैल, नंदी बैल को देखा, उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा मन में अभी इसमें बैठ के जाऊंगा तो प्रसादम में पहुंचूंगा। शुरुआत कई बार हम सोचते हैं चलो मेट्रो से चलता हूँ, रिक्शा से चलता हूँ और पहुंच जाएंगे, कुछ ना कुछ हाथ में लगेगा। क्योंकि शिवजी का एटीट्यूड ऐसे नहीं था। शिवजी ने कहा पूरा लाभ उठाना है, महाप्रभु अवतरित हो गए हैं, छोड़ना ही नहीं इस कलयुग में। इसलिए आचार्यगण कहते हैं लाइफ मिला है महाप्रभु के चरण पकड़ो, क्योंकि महाप्रभु कहते हैं कलयुग विशेष कलयुग है। और एक विशेषता क्या है, धन्य कली। इस कलयुग का ना बाकी कलयुग की तो इतनी निंदा की है, इतनी अपशब्द बोले हैं, लेकिन आचार्य ने इस कलयुग की प्रशंसा की है, धन्य कली। ये वर्ड ये उसको जैसे डेजिग्नेशन देते ना किसी को उपाधि, इस युवा को ये उपाधि से संबोधित किया है, सम्मानित किया है, धन्य कली। क्यों धन्य कली है? चैतन्य महाप्रभु है। नाम तो ठीक है हर युवा में हो सकता है, लेकिन जो महाप्रभु प्रेम नाम संकीर्तन दे लेकर आए हैं, ये किसी युगा में कलयुगा में अवेलेबल नहीं है, इसी युगा में है। इसलिए हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए, बहुत हीन दीन नहीं, बल्कि सोचना चाहिए अरे महाप्रभु अब मुझे मौका मिला है। उतने उत्साह से महाप्रभु के चरण उनका जो गुणगान है श्रवण कीर्तन के लिए लगना चाहिए। तो शिवजी ने देखा प्रसाद में नहीं पहुंचना है, गौर कथा के शुरुआत में पहुंचना है। उनकी नजर गई, कहा गई दूसरे के पार्किंग में, देखा ब्रह्मा का हंस वहां खड़ा है और वो तो उड़ने में तक फास्ट है। उन्होंने कहा गए, अब ये वर्णन नहीं आया कि ब्रह्मा को पूछा कि नहीं पूछा, अभी तो कार को तो चाबी चाहिए, हाँ लेकिन अभी मेरे तो पढ़ने में नहीं आया, लेकिन हो सकता है किसी लीला में। शिवजी गए और सीधा हंस के ऊपर विराजमान, आज जो सवारी का आनंद शिवजी ने लिया और उनके हृदय में बहुत चहल पहल हो रही थी, कब सुत गोस्वामी के सामने पहुंचूंगा जो नैमिषारण्य है मध्य द्वीप में। और शिवजी जाते हैं और हंस वाल लैंड करता है, उतरते हैं और दौड़ दौड़ के जाकर सुत गोस्वामी के चरणों में बैठते हैं, जिनसे गौर भागवत को सुनते हैं। तो सोचो शिवजी जैसी पर्सनालिटी महाप्रभु का गुणगान सुनने के लिए दौड़ रही है, लालायित है, तो हमें क्यों नहीं। इतना बड़ा पद सब कुछ होने के बावजूद भी सुत गोस्वामी से महाप्रभु का गुणगान सुन रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का गुणगान सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो गौर तत्व है और जो कृष्ण तत्व है वो एक ही है। आचार्यगण कहते हैं कि ब्रज लीला में दो रूप हैं, स्वयं रूप रसराज कृष्ण, ये शब्द यूज करते हैं, स्वयं रूप कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वृंदावन में तो स्वयं रूप रसराज कृष्ण और दूसरी पर्सनालिटी कौन है? श्रीमती राधा रानी। ये बहुत सारी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, कहते हैं राधा कृष्ण मिलित तनु, जो द्वि तनु थे वो एक तनु हो जाता है, उसको कहते हैं एकीभूत, एकीभूत हो जाते हैं। और वो कौन है? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद सरल भाषा में कहा करते थे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आने। तो आचार्यगण कहते हैं कि ये गौर तत्व और कृष्ण तत्व एक ही है और इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन उस कृष्ण लीला में वो दो स्वरूप थे, लेकिन इस गौर लीला में वो क्या है? एक ही है। इसलिए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में कहते हैं, नंद सुत बलि जारे भागवत गाय, सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाय। नंद सुत बलि जारे भागवत गाय, जिस भागवतम ने गुणगान किया कि ये नंद महाराज का पुत्र है, वही नंद महाराज के पुत्र चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत में अवतरित हुए हैं। अब क्यों अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में? कृष्णदास कविराज शुरुआत में ही एक चीज हमें बताते हैं, शुरुआत में ही ये चीज वर्णन करते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर अल्लादनी शक्तिर अस्मान एकात्मानमपि भूयपुरा देह मेदौ गतौतो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्विती सुवलितम कृष्ण नवमी स्वरूपम या नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो कृष्णदास कविराज शुरुआत में कहते हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृति, हाँ, अल्लादनी शक्ति रस्मात, अपने दिव्य आध्यात्मिक शक्ति के कारण राधा कृष्ण दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं। पहले भूविपुरा, बहुत पहले इस पृथ्वी में वो दो स्वरूपों में अवतरित होकर अपने दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं, लेकिन अभी वो क्या हो गया है? चैत्य माप्तम, वो एक हो गया है। एक हो गए तो उन्होंने क्या कर लिया है? वो कहते हैं राधा भाव और द्विति, वही कृष्णा जिन्होंने राधा रानी की दो चीजों को स्वीकार किया है और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत में क्या हो गए हैं? अवतरित हो गए हैं। और वास्तव में ये समझना बहुत आवश्यक है। कई बार कृष्णदास कविराज कहते हैं मैं ये सब वर्णन करना करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन इसके बारे में बोलेगा? तो ऐसे कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और श्रीमती राधा रानी की दो चीजें स्वीकार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे नवद्वीप में, मुरारी गुप्त, वो महाप्रभु के बारे में अति दक्ष थे। और एक दूसरे डिवोटी थे दामोदर पंडित, वो हमेशा प्रश्न पूछते रहते थे। तो मुरारी गुप्त को उन्होंने पकड़ा और प्रश्नों की झाड़ लगा दी, मतलब बौछार कर दी। उसमें से एक प्रश्न उन्होंने पूछा, केने श्याम वर्णते जी हैला गौर तनु, केने वा कीर्तने लोटे गाय लय रेनो। वो कहते हैं कि ये कृष्णा केने श्याम वर्णते जी, क्यों श्याम वर्ण त्याग दिया और गौर तनु उन्होंने धारण किया, क्यों कीर्तन में लोटपोट होकर धूल से अपना जो अंग है वो भर दिया। केने वा राग रवेश छाड़िया संन्यास, केने देश देश बोले पाई होताश, क्यों उन्होंने अपना नट पर वेश ब्रज का छोड़ दिया और संन्यास धारण किया, और सारे संसार में क्यों भ्रमण करने लगे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। केने कांदे राधा राधा गोविंद बोलिया, गरे गरे फिरे केने प्रेम याचाया। चैतन्य मंगल में वर्णन आता है, जिसमें वो कहते हैं केने कांदे राधा राधा गोविंद बोलिया, क्यों वो कृष्णा राधा राधा गोविंद बोल बोल के रो रहे हैं और पूरे इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं लोगों को कृष्ण प्रेम देकर। तो मुरारी गोप ने जब प्रश्न सुना तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो सोचते कि इतना गहरा प्रश्न तुम मुझे पूछ रहे हो। तो उन्होंने कई सारी चीजें सुनाई उनको इसके उत्तर में, तो बल्कि इसके उत्तर में मुरारी गुप्त ने कहा कि भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे, हम निरंतर इन सब चीजों को सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे तो भगवान सोच रहे थे। भगवान ने सोचा कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मेरे जो अंश आदि है, विस्तार आदि है, सृष्टि का कार्य आदि करते हैं, मैं इस संसार में अवतरित होता हूं किसी विशेष प्रयोजन के लिए। लेकिन भगवान कहते कि मैं अवतरित होकर भी कुछ अपूर्णता महसूस करता हूं। कृष्ण तो पूर्ण है, कृष्ण क्या है, पूर्ण है, लेकिन वही कृष्ण सोचते हैं कि मुझमें भी कुछ कमी है, मैं भी अपूर्णता महसूस कर रहा हूं। अरे अपूर्णता के बारे में भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम सुना था अपनी भार्या किससे, रुक्मिणी देवी से। भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो भगवान कृष्ण सत्यभामा के महल से रुक्मिणी के महल में जाते हैं, रात्रि वहां बिताकर। लोचनदास ठाकुर कहते कि जैसे वो जा रहे थे रुक्मिणी आनंदित हो जाती है, सुगंधित जल पात्र पुष्प सेविकाएं सबको इकट्ठा करके अपने महल के गेट पर और कृष्ण का स्वागत करती हैं। और कृष्ण आते हैं, उनको एक ऊंचे आसन में बिठाती है और उनको वहां बिठाकर श्री जो रुक्मिणी देवी है वो भगवान के चरण कमलों का अभिषेक करती है और उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धरकर जोर जोर से रोने लगती है। कभी उस चरण कमलों को माथे में लगाती थी तो कभी उस चरण कमलों को हृदय में लगाती थी, कभी उस चरण कमलों का चुंबन लेती थी और वो रोते जा रही है और कृष्ण देख रहे हैं। कृष्ण ने कहा, देखा, अरे हे रुक्मिणी तुम्हें क्या हो गया, मेरे चरणों को हृदय में पकड़कर क्यों क्रंदन कर रही हो। तो कहती है रुक्मिणी, कहती है चक्रपाणि, चक्र धारण करने वाले कृष्ण आप इसको नहीं समझ सकते। कांदन आर है तो किछु ना बुझी तोमार की लागी कांदह देवी कह समाचार। वो कहती है मैं जो रो रही हूं ना ये आप कभी भी नहीं समझ सकते हो। कृष्ण हाथ जोड़ते हैं, कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी बताओ बताओ, तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो और मैं जानता हूं कि हे रुक्मिणी तुमसे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। कृष्ण की प्रॉब्लम क्या थी, जो भी उनकी रानी सामने थी उनको एक ही डायलॉग तुम सबसे अधिक प्रिय हो। वो नारद मुनि जब आए थे अमरावती इंद्र के नंदन कानन से पारिजात का एक वृक्ष लेकर, वृक्ष नहीं पुष्प लेकर, वो पुष्प लेकर पहुंचे तो कृष्ण उस दिन रुक्मिणी के साथ ही बैठे थे और नारद मुनि ने कहा कृष्णा आपने तो बोला है पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, ये रहा पुष्प और ये आपको अर्पित कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ और एक निवेदन है, जो भी आपको सबसे अधिक प्रिय है उसी को ही दे देना, क्योंकि उस समय और कोई रानी नहीं थी, रुक्मिणी साइड में बैठी थी। अभी कृष्ण की क्या हिम्मत पत्नी के सामने बोलने की कि मुझे सत्यभामा प्रिय है, आप मुझे और दूसरी रानी प्रिय है। कृष्ण ने फूल उठाया, बहुत कुछ हृदय में हो रहा था, रुक्मिणी तुम ही सबसे प्रिय हो, फूल को रखो। और फिर नारद गए सत्यभामा के पास और वो कहते हैं जानती हो अभी अभी एक घटना घटित हुई है, तुमको तो अंधेरे में रखा है, कृष्ण तो प्रेम तो अधिक प्राण से भी अधिक प्रिय तो रुक्मिणी है, वो आग बबूला हो गई। उसने कहा नारद तुम मेरे गुरु हो आज से। हरिवंश पुराण इस लीला का वर्णन करता है, कहता है नारद आप तो मेरे गुरु हो और ऐसा कुछ बताओ, मुझे पुष्प नहीं चाहिए, मेरे आंगन में पूरा पेड़ चाहिए। वर्णन आता है नारद ने कुछ विधि विधान बताए और जिसके द्वारा कृष्ण को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर दिया, किसने? सत्य भामा ने। और वो लीला सुनते हम नारद आ गए एक दिन, कहते देखिए क्या हो रहा है मेरे डिसाइपल का, शिष्य का क्या चल रहा है आजकल। तो देखा कि शिष्य ने तो कृष्ण को वश में कर दिया है। गए कहते अभी दक्षिणा चाहिए मुझे, गुरु दक्षिणा। सत्य बाबा कहते गुरु दक्षिणा ठीक है, बताइए क्या दक्षिणा दो। तो कहते दक्षिणा जो आपको जो प्राणों से अधिक प्रिय है वो मुझे दक्षिणा के रूप में चाहिए। नारद सबके प्राण लेने के लिए कहते वहां। तो नारद ने सत्य बाबा को कहा, तुम सत्य बाबा को सबसे अधिक प्रिय कौन थे? कृष्ण। हमें सबसे अधिक प्रिय कौन है? स्वयं से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो सत्य बाबा ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और किसके हाथ में दे दिया? गठबंधन वहां कर दिया। नारद ने हाथ पकड़ा, निकल ही रहे थे द्वार से बाहर, सब रानियां कहती है कि ये इस केवल कृष्ण पर इसका अधिकार नहीं है, हम भी। तो वो सारी लीलाएं हैं। तो कृष्ण कहते हैं इस स्थान में रुक्मिणी ने जब चरण पकड़े कि तुम प्राणों से अधिक प्रिय हो। जब कहा प्राणों से अधिक प्रिय हो, और भगवान थोड़े दुखी हो गए, उनको लगा, उन्होंने बोला हे रुक्मिणी तुम्हारे साथ पहले मजा किया था मैंने। एक बार रुक्मिणी को बोला था कि किससे शादी कर ली तुमने? गोपाल पढ़ा लिखा नहीं है, गोवे चराता था, वो शिशु जरासंध के भय से इतने दूर भागा। भगवान ने अपने बारे में इतने निंदापूर्ण वचन कहे, कहते कि अभी भी टाइम गया नहीं है रुक्मिणी, अभी भी तुम किसी और को चूज कर सकती हो। रुक्मिणी जैसे ही सुना था ना, भागवतम में आता है दशम स्कंध में, रुक्मिणी सुनने मात्र से मूर्छित होकर गिर पड़ती है और कृष्ण उसको गोद में लेके फिर बड़ा सिद्धांत पूर्ण वचन कहते हैं। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं कि शायद तुम्हें जो मैंने कटु वचन बोले थे वो तो याद नहीं आए तुम्हें। हाँ, अभी तक तुम्हारा हृदय इतना कठोर है कि जो मैंने बोला था उसको लेके बैठी हो हृदय में। तो कहते हैं नहीं, हाँ वो सब चीजें नहीं। रुक्मिणी देवी कहती है, तो रुक्मिणी देवी फिर कहती है अंतर कठिन मोर कबो नहे नाम, एक महाभाग्य सबे तुम्ही मोर प्राण। रुक्मिणी कहती है कि मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है प्रभु, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज क्या है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप जैसे परम भगवान मेरे प्राण हैं, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। और वो कहती है कि तुम्हारा पदारा विंद तोमा है ते अधिक, आज यहाँ नाचे है शिव पिबा माधवी। वो कहते हैं कि आपके चरण कमल आपसे भी श्रेष्ठ है, जिनसे जो सेवामृत निकलता है, चरणों की सेवा करके जो सेवामृत निकलता है उसको पान करके ब्रह्मा जी शिव जी भी नृत्य करने लगते हैं। तो ऐसी जब वाणी वो बोलते जा रहे थे तो रुक्मिणी कहते कि आप समझ नहीं सकते। फिर रुक्मिणी ने एक वचन बोला, रुक्मिणी ने कहा जदि राधा बावर दे कर आरोपान तबे से जाने में निज प्रेमार लक्षण। उन्होंने कहा जदि राधा रानी का भाव आपने हृदय में आरोपित करोगे, स्थापित करोगे, तभी आपके जो चरण कमलों की सेवा है उससे मिलने वाला जो आनंद है उसको आप समझ सकते हो। कृष्ण को शौक लगा, पहले तो बोला था उसने कि आप नहीं जानते हो एक ऐसी चीज है, हाँ, कि आपके चरणों की सेवा करके जो आनंद प्राप्त होता है। तो रुक्मिणी कहती है कि आप वो नहीं जानते हो, और वो तभी जानोगे जब श्रीमती राधा रानी के भावना को अपने हृदय में धारण करोगे। तो कृष्ण इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोचनदास ठाकुर कहते हैं हे बोला सुनिया प्रभु हिया चमत्कार की बैल देवी करह हर बार। तो कहते कि क्या कहा तुमने रुक्मिणी, फिर से बोलो फिर से बोलो। तो रुक्मिणी देवी बोलने लगती हैं। कृष्ण कहती है ऐसी दुर्लभ चीज तुमने आज बोली है जो आज तक मैंने सुना नहीं था। हाँ, मैं उसके लिए लालायित हो गया हूं, उस चीज को प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए। हाँ, तो कृष्ण चाहते हैं उस चीज को समझना, जिसके कारण वो आगे चलकर महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। बल्कि उसके बाद कृष्ण जाते अपने रूम में और कृष्ण सोचते हैं, मैं सर्वे सर्वा हो, सृष्टि करता हो, परम ज्ञाता हो, परम नियंता हो, परमेश्वर हो, ऐसे जो उनके भौतिक सृष्टि से संबंधित जो उपाधियां हैं भगवान सब के बारे में सोचने लगते हैं। और भगवान के तो इतना सब कुछ होकर मेरे बारे में सारे शास्त्रों ने भी बोल दिया, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, हाँ ये सारा बोला कि मैं पूर्ण हूं, लेकिन फिर भी कृष्ण कहते आज ऐसा क्या हो गया है, एक चीज मुझ में अपूर्णता मुझे महसूस हो रही है। तो भगवान सोचते हैं रुक्मिणी ने बोला ही है, लेकिन मैं शास्त्रों से कंफर्म करना चाहता हूं, साधु गुरु शास्त्र। तो भगवान ऐसा सोच ही रहे तो मूर्तिमान सारे शास्त्र वेद उपनिषद आदि खड़े हो जाते हैं और कृष्ण उनके सामने कहते कि देखो मैं मेरे हृदय में अपूर्णता महसूस कर रहा हूं, आप सब बताओ कैसे इस अपूर्णता को दूर किया जा सकता है। हाँ तो सारे वेद उपनिषद आदि शांत हो जाते हैं, चुप, कृष्ण के सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं। लेकिन उन्होंने देखा एक व्यक्ति बोल सकता है और वो कौन था, श्रीमद् भागवतम। भागवतम को आगे कर दिया उन्होंने और भागवतम बोला कि हे कृष्णा, आप वास्तव में जो आपके भक्त आपकी सेवा से आनंद अनुभव करते हैं या आपके आपके प्रति प्रेम की भावना है वो आप जान नहीं सकते, यही आपकी अपूर्णता है। और ये पूर्णता तभी महसूस करोगे जब आपने एक भक्त के चरण कमलों की धूली को अपने माथे में डालोगे या उससे अभिषेक करोगे। कृष्ण सोचने लगे, ये भागवत ने और कुछ बोल दिया कि भक्तों की चरण रज को सर में डालो तभी समझोगे। तो भगवान सोचते भक्त अनंत है, फिर कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है। आप कृष्ण समझते हैं कि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के बारे में जब कृष्ण सोचते हैं कि राधा रानी का जो प्रेम है वो सर्वाधिक है, उनके चरण कमलों की धूली मेरे सर में धारण करूंगा तभी वास्तव में अपनी अपूर्णता को दूर कर सकता हूं और पूर्णता को मैं अनुभव कर सकता हूं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं एक ही शब्द में कृष्ण की जो लालसा है उसको शब्द यूज करते हैं लोभ। और वास्तव में बाकी संप्रदायों में लौल्य के बारे में आपको कभी जानने को नहीं मिलेगा, भगवत सेवा लौल्य के साथ करनी चाहिए, वो देव केवल इस संप्रदाय की है, चैतन्य महाप्रभु और गौड़िया आंदोलन की। और वास्तव में हमारी यूनिक पोजीशन क्यों है, गौड़िया क्यों हम कहलाते हैं, गौड़िया संप्रदाय जो बाकियों से, इवन हम मध्वाचार्य के संप्रदाय में हैं, लेकिन फिर भी हमारी यूनिक स्थिति है, क्यों, क्योंकि हमारे पास चैतन्य चरितामृत है। बाकी सब संप्रदाय में भागवतम है, भगवद गीता है, अन्य ग्रंथ है, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं है जिसमें विशेष चीज छुपी हुई है जो चैतन्य महाप्रभु के लिए देने आए। अमा बिना ब्रज प्रेम अन्य नारे दीते, भगवान कहते मैं तो कई युगों में अवतरित हुआ हूं लेकिन यहां मैं स्वयं जाऊंगा क्योंकि मेरे बिना ये कोई नहीं दे सकता, ये जो ब्रज प्रेम है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु या जो कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और हम कई बार इन चीजों का वर्णन करते हैं। और जिसमें कृष्णदास कविराज कहते हैं श्री राधाय प्रणय महिमा की दृशोवानेव, कि तीन चीजें चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण जानना चाह रहे थे। बल्कि आचार्यगण कहते हैं कि भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होने से पूर्व भगवान के अंदर बहुत सारा लोभ एकत्रित हुआ था। हाँ, जैसे क्योंकि लोभ की निंदा भगवान कृष्ण ने गीता में की है, त्रिविधम नरक शेदम काम क्रोध तथा लोभम, कि ये लोभ बहुत ही भयानक है, नरक प्रदान करने वाला है। लेकिन उसी लोभ का वर्णन आचार्य जन कहते हैं जब भगवान में और भक्त में होता है एक दूसरे के लिए वो दिव्य है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते लोग को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाओगे, लोग साधु संगे हरि कथा, लोग रखना ही है साधुओं का एसोसिएशन, हरि कथा को अधिक से अधिक श्रवण करना। तो भगवान के अंदर भी जब वो लोग इकट्ठा हो गया, जैसे लोग ही कौन है, जैसे एक छोटा सा बालक है और घर में किसी डब्बे में या शीशे के एक क्या कहते हैं उसे जार में माँ ने कुछ रखा हो, लड्डू रखे हो, तो छोटा सा उसका मुंह हो, बच्चा हाथ जाने इतना मुंह है, लेकिन हाथ डालता है लड्डू पकड़ता, लड्डू का साइज बहुत बड़ा है और हाथ के कारण मुंह उस जार से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, तो बच्चा रोता रहता है लेकिन लड्डू को छोड़ना नहीं चाहता और बाद में पकड़ा जाता है। या फिर बंदर को जैसे पकड़ाते हैं, हाँ, नारियल के अंदर मूंगफलियां डालते हैं, बहुत छोटा सा छेद रहते हैं, उसका हाथ जाता है, हाथ अंदर जाना इसीलिए भर जाता है हाथ, बंदर बाहर निकालने का प्रयास करता है, वो छोड़ेगा तो बाहर आएगा, इतना लोग की छोड़ता ही नहीं, जिसके कारण बंदर पकड़ा जाता है और गुलाब बनता है। तो लेकिन भगवान का जो लोभ है या भक्त का जो लोभ है दूसरे के लिए, उसका वर्णन आचार्य जी कहते कि वो दिव्य है। तो ऐसी लोभ की भावना सर्वप्रथम भगवान विष्णु में आती है और भगवान विष्णु देखते हैं कि मेरे अंदर तो 6 ऐश्वर्य है, बल इतना बलशाली हूं, भगवान को लगा कि मुझे ना फाइट करना है, किससे फाइट करो, तो उन्होंने ये अरेंज किया 4 कुमार और जय विजय, उनसे शाप दिलाकर अपने ही भक्तों को भेज दिया इस जगत में और भगवान आकर इतना फाइट का आनंद लिया 3 अलग अलग अवतारों में। तो उनका जो फाइट करने का लोभ था विष्णु का, वो पूर्ति होता है, वो कुछ खत्म होता है कि नहीं, भगवान ने देखा कि मैं नरसिम्हा के रूप में आया और वहां जब नरसिम्हा के रूप में आया तब जब हिरण्यकश्यपु को मारा भगवान ने, भगवान तांडव नृत्य करने लगे, नरसिम्हादेव कोई उनके सामने जाने के लिए तत्पर नहीं था, सब लोग भयभीत थे, प्रहलाद को भेजा, प्रहलाद माला लेकर जा रहे थे, अपने पिता के हत्यारे को माला पहनाने जा रहे थे, भगवान शांत हो जाते हैं, नरसिम्हादेव उनको अपने गोद में रखते हैं और जीवा से चाटते हैं, नरसिम्हादेव जब चाट रहे थे प्रहलाद के हृदय में कोई भय नहीं है, इतना आनंद प्रहलाद के मुख से या शरीर से निकल रहा था। ये नरसिम्हादेव प्रश्न में चिंताग्रस्त हो गए, मुझसे ज्यादा आनंद कौन अनुभव कर रहा है, ये बच्चा मेरी गोद में बैठकर इतना आनंद अनुभव कर रहा है। तो भगवान ने सोचा मुझे भी अपने पिता की गोद में बैठना है, लेकिन गोद देखा मेरा पिता तो पिलर है, खंबा कैसे बैठो उसकी गोद में। भगवान ने कहा आगे से प्रकट होगा तो माता पिता लेकर ही प्रकट होगा, वैसे नहीं, वात्सल्य रस का अनुभव होना है। तो फिर उसके बाद वर्णन आता है कि राम, भगवान राम के रूप में आए तो वहां उन्होंने देखा कि सारे मेरे मित्र भी बहुत है, विभीषण है, सुग्रीव आदि है, लेकिन बहुत आदर के साथ मित्रता है, पाव लगे तो पूरा प्रणाम करते हैं, कहते ऐसी मित्रता का क्या लाभ। वो कहते हैं भगवान राम सोचते कि नहीं, मैं आगे चलकर उनके अंदर ये लालसा हो गई भगवान राम के हृदय में कि मुझे मित्रता चाहिए जिसमें कोई आदर आदि का भावना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही घनिष्ठ मैत्री, जिसको कृष्णदास आदि लीला में कहते कृष्णदास कविराज सखा शुद्ध सेवे करे स्कंद आरोहन तुम्हें कोना बड़ा रोकर तुम्हें आमी सब। भगवान कहते हैं जब कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने वो इच्छा को पूर्ति की, उस लोक को भी उन्होंने प्राप्त कर दिया, उस इच्छा को भी कृष्ण लीला में उन्होंने प्राप्त किया कि फिर ऐसे मित्र मिले कि वो भगवान के कंधे में चर्चित थे और कहते तुम बड़ा हो क्या, हम तुमसे बड़े हैं। फिर भगवान कहते मुझे आनंद आता है, माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन आते ही न ज्ञान करे लालन पाना, कि माता मुझे एक छोटा सा बालक हीन आदि समझती है, कभी मारती है, बांधती है, खिलाती है, भगवान कहते मुझे आनंद आता है। वही यशोदा रोज आरती लेके चावल करने लगे तो भगवान कहते मेरे लिए कठिनाई हो जाएगी, उससे आनंद अनुभव नहीं करता। इस प्रकार से भगवान जो राम लीला में थे तो उस समय भी जो उनके हृदय में लोभ की भावना थी वो अपूर्णता थी, वो पूर्ति हो जाती है जब वो कृष्ण लीला प्रकट करते हैं। लेकिन कहते हैं जब भगवान कृष्ण लीला में भी तीन आयु से वो गुजरे, उन्होंने कुमार बिताया वात्सल्य का आस्वादन करने में, पौगंड बिताया भगवान ने सख्य का आस्वादन करने के लिए, और किशोर अवस्था बिताई भगवान ने राधिका दी लैया कैलर रासादि विलास कि राधा रानी आदि को लेकर उन्होंने रास लीला आदि की, कहते किशोर का भी आनंद ले लिया, लेकिन फिर भी कृष्ण तीन चीजों के लिए लालायित थे। तथापि नहिं तीना वांछित पुरा, फिर भी भगवान कहते हैं मेरी तीन चीजें अपूर्ण रही। संक्षिप्त में कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्री राधाय प्रणय महिमा की दृश्यो, राधा रानी की का प्रेम क्या है, और साधो एनाभूत मधिर मा की दृश्यो वा मधिया, और मेरे जो गुण है वो इनकी मधुर मधुरता क्या है। जैसे भगवान का सौंदर्य गुण बहुत ही आकर्षक था, जिसको भी भगवान अनुभव करना चाहते थे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा सौंदर्य ऐसे है जो मुझे ही आकर्षित करता है। द्वारका में कृष्ण अपने महल के खंभे में जा रहे थे, तो खंभे की ओर देखा तो अपना प्रतिबिंब नजर आया, तो भगवान रुक जाते हैं, उनके शब्द मुख से शब्द निकलते हैं, क्वा चमत्कारिक पुरुषः, ये चमत्कारिक पुरुष कौन है। भगवान रुक गए, फिर देखते रहे तो मैं हूं। फिर ब्रज लीला में कहा गया है, कवि कर्णपुर लिखते हैं कि कृष्ण जब गव्य चराने जाते थे, दौड़े जा रहे थे गवों के पीछे, और दौड़े जा रहे थे तो गव्य गवों का जो पांव है एक मिट्टी में धस जाता है, कीचड़ में धसता है, तो उसका क्या कहते हैं मार्ग बनता है जिसमें जल भरा हुआ था। कृष्ण दौड़ रहे थे तो अचानक ऐसे नीचे देख के दौड़ रहे थे, देखते देखते वो जो जल भरा था उसमें उनकी दृष्टि गई, दृष्टि जैसे गई देखा ये कौन सुंदर बालक है, रुक गए वहां, और अपना ही प्रतिबिंब देखकर कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। तो मधुरिमा भगवान अपने गुणों का या सौंदर्य को समझना चाहते थे, और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भगवान ये जानना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी मेरी मधुरिमा या मेरी सेवा आदि करके जो आनंद अनुभव करती है उसको जानना चाहते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण इस जगत में प्रकट होते हैं, और इसी कारण से कृष्णदास कविराज कहते हैं अभिन्न है चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण। तो उसीलिए वो कहते हैं कि जिस प्रकार से नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर वो उद्धृत करते हैं रूप गोस्वामी को, वो कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने अपने नामास्तक में कहा है पूर्वस्मात् परम एव हन्तः। रूप गोस्वामी कहते हैं कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो नाम है वो अत्यधिक दयालु है। इसी प्रकार से गौर लीला कृष्ण लीला में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण गौर लीला क्या है, विशेष है। क्या विशेषता है, उसमें बहुत अधिक उदारता है और बहुत अधिक दया की भावना है, कृपा की भावना है। तो इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं अवतीर्ण कलो, कि इस कलयुग में वो अवतरित हुए हैं अपने साथ दया की भावना को लेकर, और जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु का किसी भी व्यक्ति को आश्रय लेने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले थे प्रयाग में, तो उस समय जब पहली बार रूप गोस्वामी ने देखा तो उनको दंडवत किया, और दंडवत करते हुए रूप गोस्वामी के मुख से ये श्लोक निकला, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोवर्धिष्यम। जैसे दंडवत किया तो महाप्रभु देखने लगे, मानो महाप्रभु रूप गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे तुम तो मुझे वदान्य कह रहे हो सबसे बड़ा दानी, महाप्रभु कैसे, ये उचित नहीं है मुझे दानी कह रहे हो, क्योंकि मैं तो सन्यासी हूं, और सन्यासी के पास देने के लिए क्या है। हाँ, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं आप एक चीज दे रहे हो महाप्रभु, क्या दे रहे हो? कृष्ण प्रेम प्रदायति। तो मानो महाप्रभु दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम कैसे कह सकते कि कृष्ण प्रेम प्रदायते, ये कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं। तो रूप गोस्वामी उत्तर देते हैं कृष्णाया कृष्ण चैतन्य, आप कौन हो? वही कृष्ण हो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अब मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो अत्यंत दयावान है, परम करुणामय है, उनका आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि महाप्रभु की कृपा का यदि वर्णन करें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। बल्कि महाप्रभु की कितने कितने भक्तों पर कैसी कैसी कृपा हो गई है उसके ऊपर तो अलग से व्याख्यान हो सकता है। कृष्णदास कविराज कहते हैं हाँ कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर केवल तुम विचार करो, विचार करेले चित्ते पावे चमत्कार। केवल एक क्वालिटी को आप ले लो ना महाप्रभु की कृपा, और उसके ऊपर मनन करो, सोचो, उनके चरित्र को यदि देखो ठीक रूप से तो आपका हृदय दया और प्रीति से भर जाएगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु अत्यंत दयावान है और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें उनका आश्रय लेना का सौभाग्य मिला है। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो जगन्नाथ इंस्टॉलेशन के बाद प्रभुपाद ने गौर निताय विग्रह की स्थापना की। कराकस में शायद प्रभुपाद ने गौर निताय को स्थापित किया था हाँ पहली बार। और जब उनको स्थापित किया तो प्रभुपाद ने गीत गाने लगे परम करुणा। प्रभुपाद ने जैसे ये शब्दों का उच्चारण किया, प्रभुपाद ने पहले बोला कि ये देखो ये गौर निताय कितने दयावान है, कितने दूर से आए हैं आप सब म्लेच्छ यवनों का उद्धार करने के लिए। और प्रभुपाद ये वर्ड बोलने लगे लोचनदास ठाकुर के हाँ परम करुणा बहु द्विजना निताय गौर चंद्र। जैसे प्रभुपाद ने बोला उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो महाप्रभु अत्यंत करुणामय है। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कृपा के ऊपर बोलते हैं, एक लाइन में प्रभुपाद कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु है ना, यदि कोई नास्तिक पाषाणी जो भी हो वो यदि चैतन्य महाप्रभु का एक बार भी नाम लेता है तो उसके आंखों में आंसू बहने लग जाएंगे निश्चित रूप से। मानो प्रभुपाद इतने कन्विंस्ड है महाप्रभु की करुणा के बारे में। तो ये करुणा बहुत विशेष गुण है चैतन्य महाप्रभु का, और ये अवतार विशेष रूप से है क्योंकि कृष्ण लीला के दो पार्ट हैं, माधुर्य लीला और अवतार लीला। तो लेकिन माधुर्य लीला से श्रेष्ठ अवतार लीला है, मतलब उदारता की लीला है। क्यों लीलाएं हैं? क्योंकि अवतार लीला में माधुर्य लीला का या माधुर्य का होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कृष्ण भावना का होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? गौर लीला है। इसी कारण से ये श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। हाँ, जैसे हम सुनते हैं महाप्रभु की दया का वर्णन, तो दो तीन छोटे छोटे पास टाइम वर्णन करूंगा और फिर मैं विराम दूंगा थोड़े समय में। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के आंगन में निरंतर नृत्य करते थे और प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु ने लगभग एक साल के लिए वो कार्यक्रम बनाया था। अपने निजी विशेष भक्तों के संग में शिवा सांगर में महाप्रभु नाचते रहते थे, कीर्तन करते थे पूरी रात्रि के लिए। लेकिन एक दिन चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते एक स्थान में बैठ जाते हैं और जैसे महाप्रभु बैठे उसी समय श्रीवास ठाकुर उनके पास आते हैं और आकर श्रीवास ठाकुर कहते हैं, श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु कहते हैं तो मैं जो देख रहा हूं, महाप्रभु ने क्या देखा कि पानी के घड़े लाइन में लगा के रखे हुए थे। महाप्रभु ने कहा इतने सुंदर रूप से लाइन में घड़े लगा के रखे हैं, कौन ये जल के घड़े लेके आता है? हाँ, तो एक स्त्री वहां से गुजरने लगी मटका लेकर। तो महाप्रभु ने कहा अच्छा ये स्त्री लाती है, इसका नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु को श्रीवास ठाकुर कहते हैं इसका नाम दुखी है। महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया। महाप्रभु कहते हैं ये ऐसी स्त्री है जो कभी ये सोचती रहकर क्या कहते हैं हम सेवा करते तो उसके बदले में हम रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं। तो ये जो श्री है ये केवल महाप्रभु और उनके भक्तों को प्रसन्न करने में लगी है, उसका कोई दृष्टिपात नहीं है कि कोई भी मेरे ओर देखे, मुझे पूछे, मुझे अप्रिशिएट करे तब मैं सेवा उत्साह से करूंगी। तो लेकिन वो निरंतर जल लाना की सेवा कर रहे थे तो महाप्रभु अब उनके द्वारा आकर्षित हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कैसे संभव है जो मेरी और भक्तों की सेवा करे वो दुखी कैसे हो सकती है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, ये कौन है आज से ये सुखी। तो महाप्रभु सुखी करना चाहते हैं सबको। इवन महाप्रभु गए नदी के किनारे और नदी के किनारे जाकर महाप्रभु हरि बोल नाचते गाते जा रहे थे और वहां एक धोबी था। हमेशा हम सुनते हैं धोबी भी उतने ही उत्साह से कपड़े लेकर पटक पटक के मार रहा था, सारा गुस्सा कपड़ों पर निकाल रहा था। हाँ कई बार होता है ना पूरे दिन का गुस्सा कोई मिले तो फिर निकालते हैं, तो वैसे ही। और महाप्रभु गए नाचते हुए गाते हुए हरिनाम का उच्चारण करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चैतन्य महाप्रभु गए उन्होंने कहा अरे धोबी हाँ तुम क्या करो, कृष्ण का नाम लो हरे नाम का उच्चारण करो। धोबी ऐसे आंखें और ऊपर करके देख रहा था, पहले तो उसको कपड़ों की आवाज आ रही थी, अब ये महाप्रभु की आवाज आने लगी। उन्होंने आंखें ऊपर की और देखा ये महाशय कौन है हरे नाम लेने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम तो सन्यासी हो, तुम्हारे लिए नाचना गाना हरे नाम लेना सरल है। हाँ ये हरे नाम लूंगा तो कपड़े कौन धोएगा। हाँ महाप्रभु कहते अच्छा मैं आया हूं सबको धुलाई करने के लिए। हाँ महाप्रभु कहते हैं कि मैं कपड़े धोता हूं तुम क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना सुनने मात्र से धोबी का हृदय द्रवित हो गया, अभी उसके मुख से केवल हरि नाम निकल रहा था। बाद में उसकी पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, सब क्या बोल रहे थे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।
ये लीला जाहिर विराम नहीं होती, वो पहले तो बच्चे आ गए, देखा पिता तो इन हरि नाम लेते जा रहे हैं, उसको समझ नहीं आया बच्चों ने जैसे पिता को हाथ लगाया वो भी नाचने गाने हरे नाम लेने लगे। पत्नी प्रसाद लेके आ रही थी, हाँ जैसे कोई काम नौकरी में जाता है तो बाद में कुकिंग करके रोटियां लेके चलती है वाइफ सर के ऊपर धारण करके। पहुंची तो उसने देखा मेरे बच्चों की हालत क्या हो गई है, अपने पति को देखा वो भी हाँ नाच रहे हैं गा रहे हैं। पहले तो वो डर गए कि शायद अकेले भूत प्रेत ने पकड़ा तो नहीं वहां वहां उसके किनारे, किसके किनारे, नदी के किनारे एकांत में। फिर वो गई नजदीक और वो डरी हुई थी। पहले तो वो जाकर उनके गांव के जो बाकी लोग हैं ओझा उनको ले आती है और अलग अलग जो ओझा जो लीडर था उसने कहा डिसाइपल को भेजता इसका भूत उतार दो। डिसाइपल जैसे नजदीक गया ना वो भूत ने उसी को भी पकड़ लिया और वो भी हरि नाम का उच्चारण करने लगा। तो फिर ऐसे सारे डिसाइपल हरि भक्त हो गए और गुरु ने सोचा मैं छोटा गुरु नहीं हूं, मैं बहुत बलशाली हूं, इसका मुझ पर नहीं प्रभाव हो सकता। ये गुरुदेव भी गए और जैसे उसके संपर्क में आ गए धोबी के वो भी जोर जोर से हरि नाम लेने लगे। तो महाप्रभु कहते हैं मैं आपकी दोनों प्रकार से धुलाई करने आया हूं, आंतरिक धुलाई अंतः कृष्ण भय गौर। जैसे कृष्ण ने भी अंदर बाहर बदल दिया अपने आप को, वैसे भी गौर कहते हैं कि मैं भी आपको आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से बदलने आया हूं। बाहरी रूप से तो हम बदल जाते हैं भक्तों के संपर्क में आते, नाके तिलक गले कंठी ये सब तो धारण कर ही लेते हैं, लेकिन अंदर भी हाँ ढिलाई करते हैं महाप्रभु अपने भक्तों के संग के कारण, हरे नाम आदि के कारण। तो महाप्रभु बहुत दयाशील अवतार है, बल्कि महाप्रभु को अट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम विनम्रता का भाव हृदय में धारण करके हाँ सेवा करते हैं। कुछ ब्रह्मचारी का कथा आता है, ये ऐसा स्थान था शिवा सांगर, सरलता से प्रवेश नहीं था उसमें, तो वहां ऐसी महाप्रभु की कोई वदान्यता नजर नहीं आ रही थी, सिलेक्टेड लोगों पर कृपा हो रही थी वहां। तो एक बार तो और वहां जब अंदर दरवाजे बंद करके कीर्तन होता था तो नवदीप के बड़े बड़े ज्ञानी पंडित ब्राह्मण आदि जो छेद होते थे उसमें से ऐसे देखा करते थे अंदर चल क्या रहा है। कोई कहता है कुछ शराब आदि पी के नाचते गाते होंगे, कोई कहते यंग स्त्रियों को लाकर उनके साथ नाचते गाते होंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। एक ब्राह्मण था उसको जाने नहीं दिया और उसको प्रवेश नहीं दिया, उसको बहुत गुस्सा था ये चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। उसने कहा जब भी मिलेगा ना उसको दिखाऊंगा। तो एक वो जाके तो एक दिन नदी के किनारे बैठ गया, लेकिन एक दिन दूसरा एक ब्रह्मचारी बड़ा बचपन से फल खाता था और दूध ही पीता था, कोई पापमय भक्षण नहीं, अन्न ग्रहण नहीं किया था उसने, बहुत ही पवित्र मासूम सरल हृदय वाला, वो बारंबार श्रीवास ठाकुर के पास जाता था, श्रीवास ये एंट्री पास दे दो, हम कहते ना जन्माष्टमी का पहला वीआईपी पास मत दे दो या किसी प्रोग्राम का पास। तो यहाँ वो लाइन लगी थी, पहले तो श्रीवास ठाकुर की सास थी, उसने सोचा मेरे क्या कहते जमाई में दामाद के घर में कीर्तन कथा महाप्रभु का हो रहा है, मुझे तो इजी चांस है, लेकिन उसका हृदय सरल नहीं था। वो एक टोकरी लेके उसके नीचे बैठ गए और महाप्रभु के भक्त रात्रि में कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और कोई ऐसा ऐरा गैरा व्यक्ति वहां प्रकट होता था महाप्रभु के हृदय में पता चलता था। महाप्रभु ने कहा आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है श्रीवास, लगता यहाँ भक्तों के अलावा और कोई व्यक्ति है। श्रीवास ठाकुर ने पहले तो ढूंढ लिया सब जगह घर इधर उधर, महाप्रभु कोई नजर नहीं आ रहा है, ठीक से जाके ढूंढो, और जाके टोकरी ऐसी ऊपर की तो उनके सास नजर आए। हम सोचते हैं सास को भी भक्त बना देते हैं, हाँ लेकिन सास को श्रीवास ठाकुर ने बाहर बाहर कर दिया। तो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं रहता, इसलिए इस आंदोलन में ईर्ष्या के लिए स्थान नहीं है, निर्मत्सराणाम सताम, ईर्ष्या धारण करेंगे तो इस आंदोलन में ज्यादा समय हम टिकेंगे नहीं, या कृष्ण चेतना हमारे हृदय में नहीं रहेगी, मैं भी हम है यहाँ। तो वैसे ही वो जो ब्रह्मचारी था उसको लगा मैं इतना पवित्र हूँ, हर एक को गर्व होता है ना अपने अचीवमेंट से, अपनी तपस्या वैराग्य ज्ञान आदि से, तो ये गया श्रीवास ठाकुर मुझे आप प्लीज अंदर रखिए। तो उसने कहा ठीक है, तुम बड़े अच्छे लगते हो और बड़े सरल भक्त हो, ठीक है बैठ जाओ। तो छुपके से बैठ गया ब्रह्मचारी, महाप्रभु फिर से नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है, अभी नंद के पुत्र को आनंद नहीं है तो क्या होगा उसकी स्थिति। उन्होंने कहा कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ हमारे बीच में, तो श्रीवास ठाकुर का यही सेवा था ढूंढ के निकालना। श्रीवास ठाकुर ने ढूंढ के उनको आज तो पता ही था फिक्स एक को ऐसा मैंने एंट्री दिया है। तो फिर श्रीवास ठाकुर ने ब्रह्मचारी को पकड़ के लाया और ब्रह्मचारी और महाप्रभु, ब्रह्मचारी कांप रहा था क्योंकि महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए। कई ऐसे लीलाएं महाप्रभु ने अपने समय में किए जो कठोरता उन्होंने प्रदर्शित किए हैं, क्योंकि महाप्रभु ने जाना कि मेरे जाने के बाद बहुत लाइटली ना ले कोई, हाँ तो महाप्रभु ने इतना डांटा श्रीवास ठाकुर ने उनको परिचय दिया, बड़ा सरल ब्रह्मचारी है, दुबला पतला है, दूध पीता है, फ्रूट्स खाता है, किसी की निंदा नहीं करता, बहुत गुणगान किया उसका। महाप्रभु कहते हैं दुग्ध पान कहले कि मोरे है भक्ति, दूध पीने से क्या मेरे मुझ में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जैसे हम भी तरसते हैं ना गाय के दूध के लिए, शुद्ध गाय का दूध होना चाहिए देशी गाय का, अरे जो दूध मिले पियो, लेकिन क्या बोलो
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
ये दूध के चक्कर में महाप्रभु की कृपा निकल जाएगी, हम गवाह बैठे हैं। तो महाप्रभु ने कहा दूध पीने से क्या मुझ में भक्ति होगी। महाप्रभु ने इतना लंबा क्लास लगाया और भी कई सारे बोला हमने। वो ब्रह्मचारी ऐसा कांप रहा था, डरा हुआ था, कंपन हो रहा था, तो बाहर निकालो ऐसे। वो बिल्कुल हृदय में भावना रहती, उसने धारण की, वास्तव में मैं बहुत योग्यता नहीं है मुझ में, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ। चैतन्य महाप्रभु की चीज में भाग लेने के लिए मुझ में कोई योग्यता नहीं, ऐसा विनम्रता का भाव उसने धारण किया। कोई ऐसी द्वेष आदि की भावना हृदय में नहीं आई और वो निकल ही रहा था। महाप्रभु समझ गए हृदय को। तो कहते हैं कि महाप्रभु को अट्रैक्ट करने के लिए हृदय में विनम्रता का भाव। अब देखो रूप सनातन ने कैसे वक्तव्य किया है मध्य लीला में। उन्होंने महाप्रभु से मिले तब क्या उन्होंने बोला। महाप्रभु को कहते हैं कि हम रूप सनातन कहते हम इतने नीच आदि हैं। महाप्रभु कहते ऐसा दीन भाव बंद करो, मेरा हृदय फट रहा है। ऐसा बोला महाप्रभु ने, मेरा हृदय फटा हुआ है, फट रहा है। तो ऐसे ब्रह्मचारी के हृदय को देखा कि बहुत ही विनम्रता उसने धारण की है। आपने आपको तुच्छ आदि स्वीकार करके महाप्रभु कहते उसको वापस ले आए, उसको ले आते हैं और उसको उनमें प्रवेश देते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीलाएं हैं। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरित आदि ग्रंथ, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ हैं। तो भक्तों के लिए यही धन है। गौरांगेर दुटी पद चार धन संपद सही है, सही जनम भक्ति अधिकारी। तो महाप्रभु के दो चरण कमल अपने धन बना लो, और धन बनाना में चैतन्य महाप्रभु का आचार और चैतन्य महाप्रभु का विचार को समझना और उस पर चलना। प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु का आचार हमें प्रदान किया है और चैतन्य महाप्रभु का विचार अपने ग्रंथों के माध्यम से, तो फिर हमारे लिए संभव हो सकता है अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें पूर्णता प्राप्त करना।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्री चैतन्य महाप्रभु के गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के हमें गीत गाएंगे और फिर विराम देंगे। गौरांगेर दुटी पदा के नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है।
गौरांगे रुति पद धर धन संपद गौरांगे रुति पद धर धन संपद जाने बता
Hare Mohini Jai Bali Na हृदय है,
पंत्र हृदय है, वो कभी कभी मिलेगा। तो बहुत 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 धन्यवाद करना चाहेंगे।